ஹரிஹந்தாணம் நமோ சித்தாணம் நமோ ஆயிரியாணம் நமோ வஜாயாணம் நமோ லோயே சவ்வசாவுனம் சுபஞ்சணமுயாரோ சவ்வபாவப்பநாசனோ மங்களானம் ச சவ்வேசிம் பரமம் ஹோய் மங்களம். மோக்ஷ மார்கஸ்ய நேதாரம் ஹேதாரம் கர்ம பூவ்ரதாம் ஜ்யாதாரம் விஸ்வ தத்வானாம் வந்தே தத்குண லப்தை வந்தே தத்குண லப்தை வந்தே தத்குண லப்தை.
சத்வார் சூத்ர மகாசாஸ்திர கே ஆதார் சே ஆதே கண்டே பஹலே பிச்சலே செஷன் மே ஹம் லோக் பாஞ்ச சூத்ரோ கி சர்ச்சா அபேக்ஷித விஸ்தார் சே கர் சுகே தே ஜிஸ்மே சம்யக் தர்ஷன் சம்யக் ஜ்ஞான் ஔர் சம்யக் சாரித்ர இன்கோ மோக்ஷ கா மார்க் பத்லாயா கயா. யே தீன் மோக்ஷ கே மார்க் நஹீ ஹை, ये तीनों मिलकर के एक मोक्ष का मार्ग है, माने मुक्ति के मार्ग ये तीन नहीं हैं, तीनों की एकता को हमारे यहाँ जनागम में मोक्ष मार्ग कहा गया है। दुनिया में बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जो सिर्फ क्रिया से मुक्ति मानते हैं, बहुत से धर्म ऐसे हैं जो क्रियाओं का निषेध करते हैं और ज्ञान से मुक्ति मानते हैं। माने कुछ धर्म ज्ञानवादी हैं, ज्ञान मार्गी हैं, कुछ क्रिया मार्गी हैं। हमारे यहाँ कहा है ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है, ज्ञान भी चाहिए और क्रिया भी चाहिए, बिना क्रिया के काम नहीं चलेगा, तो क्रिया जरूरी है। तो कहा क्रिया तो हो लेकिन समझ पूर्वक हो, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। समझ करके कुछ भी करो, आप समझ के करो, विचार करके करो, आपको जो करना है हमें कोई ऐतराज नहीं है। आप स्वाध्याय करते हो तो समझ करके करो, आप ऐसा नहीं कि पढ़ लिया बस, पाठ कर लिया हमने, पढ़ लिया, पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े, खूब शास्त्र फाड़ दिए हमने, पढ़ पढ़ करके इतने पढ़े हमने, पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े, तोड़ी कई मालाएं, और मान कषाय घिसी नहीं मन की, और घिस डाली प्रतिमाएं। खूब किए हमने ऐसे काम, ऐसे पढ़े शास्त्र, खूब पढ़े, पढ़ करके खूब फाड़ दिए, और इतनी मालाएं फेरी हमने, फेर फेर करके मालाएं तोड़ दी, और इतने भगवान के ऊपर अभिषेक किए, प्रक्षाल किए, जल डाले और खूब घिसा उनको, प्रतिमाएं घिस दी। तो कहा अंदर में अपने मन को घिसा के नहीं, मान कषाय घिसी है नहीं, या ये सब करके मान कषाय और बढ़ गई और ज्यादा, माने इन क्रियाओं को करके अभी अपने अभिमान को और ज्यादा बढ़ाता है। कहते हैं ज्ञान भी चाहिए और क्रिया भी चाहिए, कोरी क्रिया नहीं और कोरा ज्ञान नहीं। वो ज्ञान किस काम का जब ज्ञान के साथ में क्रिया नहीं हो, और वो क्रिया कैसी होगी जिसमें समझ नहीं हो। समझ रहे हैं आप बात, बात में मैं सब समझता हूँ, मैं सब समझता हूँ, ऐसा कहने वाले लोग वो सच में कुछ नहीं समझते। एक महिला किसी के यहाँ घर गई और पहली बार उसने वहाँ पकोड़े खाए। जब लेडीज आदत होती है इस तरह की, जब पहली बार कोई पकवान कोई खाते हैं और अच्छा लगता है तो कैसे बनाया बहन, कैसे बनाया, इसके बनाने की क्या विधि है, हमें भी बता दो। थोड़ा आग्रह किया तो उन्होंने कहा ठीक है चल मैं तेरे को पूरी विधि सिखा देती हूँ, क्या चल प्रैक्टिकली बना करके बता देती हूँ कैसे बनाया जाता है। एक सबसे पहले तो गैस जलाना, बोले तो वो तो मेरे को आता है, वो तो मेरे को आता है। पर उसके बाद में क्या करते हैं अपन, ये कढ़ाई चढ़ाते हैं उसके ऊपर, बोले वो भी मेरे को आता है। बोले कढ़ाई चढ़ाने के बाद में फिर उसमें तेल डालना, बोले वो तो आता है मेरे को, आप तो और बताओ। ये हो गया, उसके बाद में गैस थोड़ा सा तेज करना और तेल को उबलने देना, बोले वो भी मेरे को आता है। जब 5-6 बार उसने आता है बोला, तो उसको लगा कि बहुत होशियार समझ रही है अपने आप को। तो उसने कहा एक काम करना, उसके बाद में एक गिलास पानी पटक देना उसमें, बोले वो तो मुझे आता है। क्या होगा मोहित भाई? क्या होगा बोलो? क्या आता है तुम्हारे को? तुम ध्यान से सुनते रहो पहले, कि क्या आता है और क्या नहीं आता है ये तो बाद में बताएंगे। सच में देखो, जो ज्ञानी होते हैं वे ज्यो ज्यो पढ़ते जाते हैं उन्हें लगता है मुझे कुछ नहीं आता है। अज्ञानियों को थोड़ा पढ़ने पर ऐसे लगने लगता है मुझे बहुत आता है, और जो ज्ञानी होते हैं 12वें गुण स्थान तक भी चले जाएं, श्रेणी चढ़ने लगे, मुनि हो जाएं, साधु हो जाएं, साधक हो जाएं, उसके बावजूद भी वे ये कहते हैं हमें कुछ नहीं आता है। क्योंकि ज्यों ज्यों उसकी गहराई में जाता है त्यों त्यों पता लगता है कि हम कितने कितने पानी में हैं। इसलिए यहां जो चर्चा चल रही है ये समझ पूर्वक क्रियाओं की चर्चा चल रही है। तत्वार्थ सूत्र उस महाशास्त्र का नाम है जिसके बारे में ये उल्लेख मिलते हैं, ये प्रमाण मिलते हैं। कई व्याख्याकारों ने ऐसे उल्लेख किए हैं कि एक बार यदि तत्वार्थ सूत्र का पाठ किया जाए तो एक उपवास का फल मिलता है। मोहित भाई लक्षित, एक उपवास, एक बार तत्वार्थ सूत्र का पाठ और एक उपवास करने जितना बड़ा फल। उपवास ऐसा नहीं कि अन्न नहीं खाया और फिर शाम को फल खा लिए, दिन भर कुछ नहीं खाया और रात को दूध मलाई ले लेंगे, ऐसा नहीं। 36 घंटे तक कुछ भी नहीं ले रहे, 36 एक उपवास में कितने घंटे, 36 घंटे का होता है उपवास। कैसे हुआ 36 घंटे का? गिरीश भाई 24 घंटे का होता है उपवास, तो एक उपवास तो 24 घंटे का होता है, 36 घंटे कैसे होगा? हाँ, पिछली रात को भी तो नहीं खाएगा, पूरी रात नहीं खाया, फिर पूरा दिन नहीं खाया और फिर पूरी रात नहीं खाया, 36 घंटे का होता है ना एक उपवास। और कोई व्यक्ति 10 उपवास करे तो कितने घंटे का उपवास होगा? 360। कैलकुलेशन बहुत अच्छा है आपका, मैथ बहुत अच्छा है। एक उपवास में कितने घंटे? 36 घंटे, तो 10 उपवास में कितने? मीर भाई 10 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना? तो सिंपल मैथ से जीरो लगाना है आगे, 252। क्या 240 घंटे होंगे ना 10 दिन में, 12 घंटे तो एक्स्ट्रा जुड़ेंगे। खैर चलिए, मुझे तो ये बतलाना था तत्वार्थ सूत्र का पाठ कर लेने पर इतने उपवास का फल लगता है, लेकिन समझ पूर्वक पढ़ने का मतलब है। बिना समझे पढ़ोगे तो कुछ का कुछ हो जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा तुम पढ़ क्या रहे हो, तुम चल क्या रहा है, ये सूत्र क्या है। पहले तो संस्कृत, ऊपर से सूत्र, और फिर कभी पढ़ा नहीं कभी समझा नहीं, तो कुछ मर्म समझ में नहीं आएगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। अभी पहला सूत्र हमने पढ़ा, अकेला सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं है, अकेला सम्यक ज्ञान भी मोक्ष मार्ग नहीं है, अकेला सम्यक चारित्र भी मोक्ष मार्ग नहीं है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो सम्यक दर्शन के पीछे पड़े हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं चारित्र लो चारित्र के पीछे पड़े हैं। ये कोई समझना ही नहीं चाह रहा है कि ज्ञान और चारित्र दोनों चाहिए, श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों चाहिए, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। फिर एक एक को समझाना शुरू कर रहे हैं, सम्यक दर्शन समझाओ सबसे पहले, सम्यक दर्शन किसका नाम है? तो कहा तत्वार्थ श्रद्धा नाम। दूसरा सूत्र पढ़ चुके हैं अपन, समझ में आइए ना, तत्वार्थ की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। फिर आगे बढ़े, अरे सम्यक दर्शन उत्पन्न कैसे होता है? तो कहा तन निसर्गाद अधिगमाद्वा, निसर्गज और अधिगमज दो प्रकार से यह सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। निसर्गज किसे कहते हैं? स्वभाव से नैसर्गिक, स्वभाव से हो वो नैसर्गिक। अधिगमज किसे कहते हैं? उपदेश से हो वो अधिगमज। दो प्रकार से उत्पत्ति हुई सम्यक दर्शन की। अच्छा, जो सात तत्व कहे थे वो कौन से हैं? नाम बतला दिया, जीव अजीव आश्रव वंद संवर निर्जरा मोक्ष। जीवा जीवाश्रव संवर निर्जरा मोक्षा तत्वम। जीवा जीवाश्रव बोलने में देखो कैसा फास्ट बोलते हैं तो ऐसे जुड़ेगा। जीव जीवाश्रव बंद को जोड़ो, जीव जीवाश्रव, जीव जीवाश्रव, जीव जीवाश्रव, जीवा जीवाश्रव, है ना? सूत्र सूत्र बन गया वो, मैंने शॉर्ट में बोला तो वो सूत्र बन गया। जीवा जीवाश्रव बंद संवर्ध जरा मोक्षा तत्वम, ये सब तत्व हैं। कैसे जाने इनको? बोले नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यास। नाम से जानो, स्थापना से जानो, द्रव्य से जानो, भाव से जानो। चार प्रकार से इनको हम जानेंगे। माने जिस किसी को भी जानने की बात हो तो सबसे पहले तो आप उसका नाम जानो, फिर उनकी स्थापना, फिर वो पास्ट में क्या थे और क्या कर सकते हैं उनको जानो, और वर्तमान में क्या है ये भी जानो। किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो तो ये बातें आपको जाननी पड़ेगी। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने के लिए आपको चार बातें जाननी पड़ेगी। नाम व्यक्ति का, स्थापना कहाँ पर, कौन से पद पर है, कौन सी पोस्ट पर है, क्या है वो व्यक्ति, पहले क्या था, भविष्य में क्या कर सकता है पावर, और वर्तमान में क्या है। भूत और भावी ये द्रव्य है और वर्तमान ये भाव है, ठीक है। चलिए, और जानने के माध्यम क्या है हमारे पास में, जानने की कोई विधि है क्या? ये है ना, प्रमाण नहीं अधिगम है। या तो पूरी को जानो या अंश से जानो, टुकड़े में जानो। देखो भाई, अंश को जानने से अंशी का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। दूर से हमने देखा, देखो आपके शूज देख करके पहचान लेते हैं कि आप आ गए। इतना करंट है अपनी नॉलेज। अंश देखा व्यक्ति का, बाहर से देख रहा था उधर से कोई व्यक्ति, और इधर से ये सर दिखा इनका, सफेद बाल दिखे, और उन्होंने कहा कि हाँ मनोज भाई बैठे। कैसे पहचान लिया? शक्ल नहीं देखी फिर भी पहचान लिया, पीछे से भी पहचान लेते हैं, आगे से भी पहचान लेते हैं, साइड से फेस देखा और पहचान लिया। ये नए है, एंगल। नए का अर्थ क्या कहा था हमने? प्रमाण नए अधिगमे है। ये जो सूत्र दिया था इसका अर्थ बतलाया था प्रमाण से और नए से। ये प्रमाण और नए दोनों ही ज्ञान की पर्याय है। क्या कहा? प्रमाण और नए दोनों ज्ञान की पर्याय है। एक ऐसी ज्ञान की पर्याय, पर्याय क्या चीज है? यू नो पर्याय, पर्याय बदलना, वर्तमान अवस्था, प्रेजेंट पोजीशन कहलाती है पर्याय। मोहित भाई, जो भी वस्तु की, द्रव्य की, पदार्थ की, जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी प्रेजेंट पोजीशन को कहते हैं पर्याय। और वो प्रेजेंट बहुत सूक्ष्म है, वो प्रेजेंट इतना सूक्ष्म है कि वो हमारे को दिखाई नहीं देता है। और वो प्रेजेंट एक क्षण में, एक समय में वो प्रेजेंट पास्ट में चला जाता है और प्रेजेंट चेंज हो जाता है। वो पर्याय है, पर्याय बदलती रहती है, अवस्थाएं बदलती रहती है, दशा हालत बदलती रहती है, प्रति समय परिवर्तन होता रहता है। एक समय मात्र की ज्ञान की अवस्था, उस ज्ञान की अवस्था में यदि पूरी वस्तु ज्ञान का विषय बन रही है तो हम उस ज्ञान की पर्याय को कहेंगे प्रमाण। क्या कहा? ज्ञान की एक समय की जो अवस्था थी उसमें सामने वाली पूरी वस्तु को जाना तो हमने उस ज्ञान की पर्याय को क्या कहा? प्रमाण। और यदि उस ज्ञान की पर्याय में सामने वाली वस्तु अंश रूप में जानने में आई तो हमने उस ज्ञान की पर्याय को क्या कहा? नए। माने नए भी ज्ञान की पर्याय है, प्रमाण भी ज्ञान की पर्याय है। नए और प्रमाण दोनों ज्ञान की अवस्थाएं हैं, बराबर है। देखो आप, नए में इंपॉर्टेंट बात कही थी मैंने लास्ट में जब खत्म किया था, ध्यान है आपको? और निराकृत प्रतिपक्षो, सामने वाले के पक्ष का निषेध नहीं करना, और निराकृत प्रतिपक्षो, दूसरी बात का निषेध नहीं करना। एक बात एक एंगल से कही जा रही है तो इसका मतलब दूसरे एंगल से दूसरी बात हो सकती है। छोटे बड़े पन का व्यवहार, गोरे काले पन का व्यवहार, कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है, कौन कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इसका आधार काल की अपेक्षा से भी हो सकता है, हाइट की अपेक्षा से भी हो सकता है। हाइट से भी छोटा बड़ा हो सकता है, क्षेत्र से भी हो सकता है। फिर कौन कितना छोटा है और बड़ा है, इसका निर्णय ज्ञान के आधार पर भी हो सकता है। कौन कितना छोटा है और बड़ा है, इस बात का निर्णय उसकी पोस्ट के आधार पर भी हो सकता है, किस पद पर है। क्या एक व्यक्ति मैनेजर है और उसके अंडर में काम करने वाले बहुत सारे क्लर्क हैं, तो भले ही वो मैनेजर एज में छोटा हो लेकिन फिर भी बड़े पद से बड़ा है। तो मतलब छोटे और बड़ा कहने के कितने एंगल हो गए, कितने नजरिए से हम किसी को छोटा और किसी को बड़ा कह सकते हैं। लेकिन एक ही बात को कहे कि नहीं नहीं ये तो छोटे ही है, तो यदि ऐसा कर रहा है तो फिर वो झगड़े का कारण बनेगा, विवाद का कारण बनेगा। अंधे व्यक्तियों का उदाहरण दिया है शास्त्रों में, प्रसिद्ध उदाहरण है, कई बार सुना होगा आपने, अंधे व्यक्ति हाथी को देखे, जन्मांध सिंदूर विधानम, ऐसे मूल प्रयोग किए अमृत चंद्राचार्य ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम के ग्रंथ में। उन्होंने वहां प्रयोग किया है, कर्मागमस्य बीजम निषिद्ध जात्यंध सिंदूर विधानम सकल नय विलसितानाम विरोध मथनम नमामि अनेकांतम। मंगलाचरण में नमस्कार किया, क्या महेंद्र भाई किसको नमस्कार किया मंगलाचरण में, भगवान को नहीं, जिनवाणी नहीं, उन्होंने नमस्कार किसको किया, अनेकांत को नमस्कार किया। मैं ऐसे अनेकांत को नमस्कार करता हूँ जो अनेकांत सारे झगड़ों को धो डालता है, सारे झगड़े मिट जाते हैं, जहाँ अनेकांत है वहाँ सारे झगड़े मिट गए। इसका भी अनेकांत क्या होता है, सकल नए विलसिता नाम, इसका नाम है अनेकांत। सकल माने संपूर्ण, नए नए मतलब एक एक एंगल, विलसिता नाम सारे नए जहां एक साथ दिखाई देते हो अनेकांत है। किसी का विरोध नहीं है, किसी का निषेध नहीं है, हर विवाद का हल हो सकता, सारे झगड़े निपट सकते हैं, क्या सारे झगड़े निपट सकते हैं इत्यादवाद के द्वारा। इत्यादवाद यदि आपके पास में है, ये एक ऐसा हथियार है, ये एक ऐसी औषधि है, ये एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसा सूत्र है, इत्यादवाद और अनेकांत ये जिसके पास में है वो व्यक्ति कभी दुख नहीं पा सकता है, वो व्यक्ति कभी किसी से उलझ नहीं सकता है, वो कभी कभी किसी से पराजित नहीं हो सकता है। क्या अपराजित रहेगा वो, उसे कोई व्यक्ति जीत नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास में अनेकांत है, हमारे पास में त्यादवाद है, कथन करने की विवक्षाएं हैं, ये प्रमाण और नए है। इसके लिए का जन्मांध व्यक्तियों के द्वारा देखे जाने वाले हाथी के विधान को जिन्हें दूर कर दिया है वो है अनेकांत। अंधे व्यक्ति हाथी कैसा है अलग अलग निरूपण करते हैं, एक कह रहा है कुछ, दूसरा कह रहा है कुछ, तीसरा कह रहा है कुछ, सच्ची बात कौन सी है, सच्ची कौन सी है उनमें से, सभी सच्ची है। जो अंधे व्यक्तियों के द्वारा हाथी को, जो जन्म से अंधे, जन्मांध शब्द का प्रयोग किया है, जन्म से अंधे, एक ने हाथी का पैर पकड़ लिया, एक ने पीठ पकड़ ली, पेट पकड़ लिया, एक व्यक्ति ने उसकी सूंड पकड़ ली, एक व्यक्ति ने उसके दांत पकड़ लिए, एक ने उसकी पूंछ पकड़ ली, अंधे थे सारे लोग। और फिर उसके बाद में उनको बुलाया गया और पूछा गया, देख लिया तुमने हाथी, फील किया हाथी कैसा होता है, सबने अपनी अपनी फीलिंग बतला दी, एक दूसरे से मिलती नहीं है। क्या भाई साहब, ये अंधे बनकर के जैन दर्शन मत पढ़ना, ये जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन है, ये आंख वालों का दर्शन है, अंधों का दर्शन नहीं है। इसलिए अंधे होकर के नहीं, आंखें हो तो काम होगा। क्या कह दिया यहाँ, प्रमाण और नए, ज्यादा चर्चा नहीं करनी है ना। मेरे चार पीरियड हैं अपने पास में अभी और बचे हुए, अभी वाले को मिला करके, उसमें मैं ये पहला अध्याय पूरा करके जाऊंगा महेंद्र भाई, क्या और यदि पूरा नहीं होगा तो फिर मैं रुक जाऊंगा। क्या क्या हो गया, एक दिन और नहीं आ सकते आप लोग ऑफिस से जल्दी, आ सकते हैं ना, हाँ तो बस पूरा करके जाएंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है पहले पूरा हो गया तो पहले चला जाऊंगा, हाँ चिंता नहीं करें, समय से ही पूरा होगा।
अच्छा, जब जाएंगे तो पूरा करके ही जाएंगे, और जब जाना होगा तभी वो पूरा भी हो जाएगा। ऐसा भी पूछ रहे थे मनोज भाई, पूरा हो जाएगा ये तो चिंता मत करो आप, तो सब मैं जानता हूँ सब किसको कैसे पूरा करना है। देखिए आगे सात नंबर के सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। इन बातों को कैसे जाना जाए, हम कैसे जाने इनको, इनको जानने की क्या प्रक्रिया है। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधान तह, बोलिए निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधान तह, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधान तह। एक और देख लो आगे वाला, सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन, सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च, कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च, ये दो सूत्र हैं, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं। ज्यादा चर्चा तो नहीं करूंगा क्योंकि ये सूत्र ऐसे हैं समझ में कम आएंगे, लेकिन इन सूत्रों की व्याख्या इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि ये दो सूत्रों की व्याख्या के बेस पर धवला के 16 ग्रंथ है मोटे मोटे। क्या सत प्ररूपणा, संख्या प्ररूपणा, सत संख्या क्षेत्र प्ररूपणा, 16 मोटे मोटे ऐसे ग्रंथ, कितने 500 पेज के, 500-700 पेज का एक ग्रंथ, ऐसे कितने 16 ग्रंथ, किसकी व्याख्या है, इन दो सूत्रों की व्याख्या है। आप सोच लो आप क्या होगी स्थिति, कितना विशाल होगा, कितना विस्तार होगा। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ है एक, इसी सत्वार सूत्र की टीका है, सत्वार सूत्र की व्याख्या है, उसमें हमने ये जो दो सूत्रों की टीका है वो करीब 60-70 पेज में है, वो हमने चलाया दैनिक सभा में, और हमें कम से कम 6 महीने लगे उसे चलाने में। क्या आप कहो तो यहाँ भी चलाएं? क्या 6 महीने लगे उसमें, लेकिन कोई बात नहीं, आप चिंता नहीं करें, 6 महीने की बात को 6 मिनट में कैसे पूरा करना है ये हमें आता है। क्या ज्यादा समय नहीं लेंगे अपन, इसको पूरा करें अपन। क्या बतलाना चाहते हैं इन चीजों के माध्यम से, निर्देश, निर्देश क्या होता है, वस्तु के स्वरूप को जान लिया, उसका नाम जान लिया, वो कहलाता है निर्देश। निर्देश मीन्स नाम, बस खत्म बात। निर्देश क्या चीज है, नाम जान लो, इसे निर्देश कहते हैं। किसी भी वस्तु का सबसे पहले कि ये जीव है, ये क्या है, बोले जीव है, इसका नाम जान लिया हमने, ठीक है। फिर निर्देश के बाद में दूसरा कहा स्वामित्व, स्वामित्व किसे कहते हैं, वस्तु का मालिक कौन है, जो मालिक होगा वो उसका स्वामी कहलाएगा। जैसे सम्यक दर्शन, सबसे पहला शब्द हमने क्या कहा, सम्यक दर्शन, शब्द समझ में आ रहा है, क्या शब्द है, शुद्ध बोलो पहले, सम्यक दर्शन, ये नाम जान लिया हमने। अब कह रहे नाम जानने के बाद, माने निर्देश के बाद, स्वामित्व, सम्यक दर्शन का स्वामित्व, माने सम्यक दर्शन किस में होगा, और सम्यक दर्शन जीव में होगा, सम्यक दर्शन पुद्गल में नहीं होगा, धर्म धर्म आकाश काल में नहीं होगा, ऐसा उसे पहचानने का नाम है स्वामित्व। स्वामित्व मतलब देखो हमें मोबाइल लेना है, तो पहले तो मोबाइल जाना हमने, ये तो निर्देश हो गया। फिर स्वामित्व पहचानो, कौन कौन सी कंपनी का आता है भाई, कौन सी कंपनी के आते हैं, कौन सी कंपनी बनाती है मोबाइल, मोबाइल कौन सी बनाती है, सैमसंग है, एप्पल है, दो तो मुख्य ही है कंपनियां। तो आपने पहले कंपनी के बारे में जाना, ये कंपनी के बारे में क्यों जाना आपने, आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना होता है तो आप उस प्रोडक्ट के नाम जानने के बाद आप उस प्रोडक्ट को बनाता कौन है उसके स्वामित्व के बारे में विचार करते हैं। निर्देश, स्वामित्व, फिर साधन। थर्ड नंबर पर आप देखेंगे उस वस्तु के साधन के बारे में। साधन किसे कहते हैं? साधन मतलब वो बनी कैसे है, बनने की प्रोसेस क्या है। कई बार जब तक इन बातों के बारे में निर्णय नहीं हो तब तक आप वस्तु को खरीदते नहीं है। मार्केट में मिठाई मिल रही है बहुत अच्छी, बनी कैसे है ये बताओ पहले, वेज है नॉन वेज है, उसकी उसके बनने की प्रक्रिया क्या है, हिंसा हिंसक प्रक्रिया से बनी है या अहिंसक प्रक्रिया से बनी है। तो उसके बनने की प्रोसेस को तीसरा शब्द दिया यहां साधन। पहला निर्देश, निर्देश मतलब नाम, स्वामित्व मतलब मालिक कौन है उसका, फिर निर्देश स्वामित्व के बाद में साधन, साधन मतलब उत्पत्ति का कारण, कैसे बनी है वो उत्पत्ति की प्रक्रिया, उसके निर्माण किस तरह से हुआ है। साधन के बाद में अधिकरण, किसके आधार पर है वो उसका अधिकरण। फिर स्थिति, स्थिति मतलब उस चीज को खरीदने का निर्णय करने के पहले आप ये देखेंगे कि ये चीज ड्यूरेबल है या नहीं है, चलेगी कितनी ये बताओ। आज खरीद लिया, ऐसी चीज को खरीदने से आप भी घबराते हैं जिसके बारे में आपने पूछा कि इसकी गारंटी वगैरह क्या है और दुकानदार ने आपको जवाब दिया कि आप यहाँ पेमेंट करो और यहाँ पेमेंट करने के बाद में चीज को लेकर के ये दरवाजे से बाहर निकलो, वापस अंदर आओ, हमारी कोई गारंटी नहीं है। बोलो आप तैयार हैं ऐसी चीज को लेने के लिए? और फिर महंगी हो तब तो हरगिज नहीं, जिस चीज की इतनी गारंटी नहीं हो, दरवाजे से नीचे उतरे, दहलीज पार की आपने और दोबारा अंदर आओ तो कहते हमारी कोई गारंटी नहीं है। सब गारंटी, इसका नाम क्या है? स्थिति। और विधान, अंतिम विधान किसे कहते हैं? विधान से जानते हैं भी आप लोग, आजकल विधान खूब कर रहे हैं यहाँ
है?
हाँ, विधान मतलब पार्टीशन, माने उसके टुकड़े, उसके भेद। विधान कहलाता है कितने भेद हैं उसके, उसके कितने प्रकार हो सकते हैं। जैसे सम्यक दर्शन की चर्चा की तो हम विधान बतलाएंगे, औपचमिक सम्यक दर्शन, क्षयोपचम सम्यक दर्शन, शायिक सम्यक दर्शन, ये भेद, भेदों रूप से देखना, ये है विधान। इतने शब्द समझ में आ गए आपके? शब्दों के अर्थ समझो अभी सिर्फ, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा नहीं। निर्देश मतलब नाम, स्वामित्व वस्तु का मालिक कौन, मतलब वो कौन सी कंपनी बनाती है, किसका प्रोडक्ट है, किसमें होगा वो काम है? फिर उत्पत्ति की प्रक्रिया क्या है, साधन, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, आधार, बेस क्या है उसका, किसके बेस पे टिकी है वो चीज, माने किसने बनाई है, कहां से है और उसका बेस क्या है, बिटकॉइन क्या आप जानते हैं? जानते हैं सर, तो उसका बेस क्या है ये तो बताओ पहले। कि नहीं, बेस तो कुछ नहीं है, बोले बेस कुछ नहीं है तो थोड़ा सा घबराहट होती है। तो क्या कहा यहाँ? अधिकरण। फिर स्थिति, स्थिति बहुत बड़ी चीज है, उसकी ड्यूरेबिलिटी, कितने समय तक चलेगी वो चीज। और फिर विधान मतलब उसके भेद प्रभेद। ये सब जानने के बारे में इन्होंने कहा, इतनी बातों के आधार पर आप यह निर्णय करेंगे कि आपको वो चीज लेनी है या नहीं लेनी है। विधान मतलब उसके भेद, भेद मतलब कितनी तरह की आती है वो चीज, माने आपने कंपनी भी देख ली, आपने चीज भी देख ली, आपने उसकी गारंटी भी देख ली, एक साल की वारंटी गारंटी मिल रही है, सब सब देख लिया आपने, ड्यूरेबिलिटी भी है, सब चीज है। लेकिन ये तो देखो इसमें फीचर कौन कौन से है, ये दो मॉडल अलग अलग है तो आपको कौन सा मॉडल लेना है, ये विधान। लास्ट वाला पॉइंट क्या है, ये मॉडल अलग है, ये मॉडल अलग है, इस मॉडल से ये इस तरह की चीज मिलेगी, इसमें ये फीचर्स हैं और इसमें ये है, ये विधान। देखो आगे बढ़ते हैं अपन, इनसे हमने वस्तु का ज्ञान किया, फिर कहा तत्व, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प बहुत्व, कितने तरह से समझा रहे हैं इन सब बातों को। क्या तत्व किसे कहते हैं? तत्व मतलब अस्तित्व, सत्य जानना बहुत जरूरी है। क्या इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं भाई, सत्य किसे कहते हैं? जिसका अस्तित्व है। देखो आपको यहाँ साल भर पढ़ाते हैं महेंद्र भाई, है ना, और क्या पढ़ाते हैं? आत्मा के बारे में, आत्मा के बारे में बतलाते हैं। आपके दिमाग में प्रश्न खड़ा होता है कि नहीं? सबसे पहले जिस आत्मा की बातें बतला रहे हैं वो आत्मा दिखता नहीं है, उस आत्मा का अनुभव आज तक कभी हुआ नहीं है। जिस आत्मा वात्मा की बातें कर रहे हैं वो आत्मा है भी के नहीं है, कोई नहीं, और अपन जबरदस्ती बातें मारे जा रहे हैं, है ही नहीं। तो आत्मा छे, आत्मा है, मैंने फर्स्ट स्टेप ही जिसकी बात कर रहे हो वो है ही नहीं, तो बात करना बेकार है। सत्य फर्स्ट पॉइंट दिया, सत्य से जानो, सबसे पहले ये नक्की करो है। फिर सत्य के बाद में कहा संख्या, संख्या किसे कहते हैं? उसकी गिनती कितनी है उसे कहते हैं संख्या। वेदों की संख्या, वेदों की गिनती वो संख्या कहलाती है, काउंटिंग उसकी। और क्षेत्र किसे कहते हैं? सत संख्या और क्षेत्र एरिया, क्षेत्र माने एरिया, मिलेगी कहाँ, रहती कहाँ है वो वस्तु, होती कौन सी जगह पर है, क्या है, ये पहचानने का नाम क्या है? क्षेत्र। सत हो गया, संख्या हो गया और क्षेत्र हो गया। इनकी बारीकियों में यदि अभी मैं जाऊं ना महेंद्र भाई, सम्यक दर्शन का क्षेत्र कौन सा है बोलो? सम्यक दर्शन का क्षेत्र कौन सा, एरिया क्या है सम्यक दर्शन का? सम्यक दर्शन का एरिया है श्रद्धा गुण, सम्यक दर्शन का एरिया है आत्मा। आत्मा से बाहर नहीं होगा सम्यक दर्शन, उसकी जो बाउंड्री है ना सम्यक दर्शन की, इसका मतलब सम्यक दर्शन यदि कहीं होगा तो श्रद्धा गुण में होगा, आत्मा में होगा, बाहर होता ही नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन को बाहर में तलाशना बेवकूफी का काम है, ये तलाशी जा रहा है, सम्यक दर्शन नहीं मिल रहा, सम्यक दर्शन नहीं मिल रहा, कहाँ मिलेगा, अलमारी भूल रहा है, तलाश रहा है, अलमारी पूरी बिखेर दी, सम्यक दर्शन नहीं मिल रहा। क्या बहुत जरूरी चीज है सम्यक दर्शन, किसी ने कहा कि कहाँ मिलेगा, तो अब बेचारे ने तो व्यवहार में कह दिया था कि मंदिर जा महेंद्र भाई के वहां स्वाध्याय में, तो यहाँ करके बैठा और ढूंढने लगा इधर उधर, बोले क्या देख रहे हो? सम्यक दर्शन देख रहा हूँ। कहा कि यहाँ मिलेगा, अरे भाई सम्यक दर्शन आत्मा में होता है, उसके बाहर नहीं मिलेगा। क्षेत्र सब संख्या क्षेत्र, स्पर्शन किसे कहते हैं? क्षेत्र के बाद तीनों काल संबंधी निवास स्पर्शन कहलाता है, पहले कहाँ थी, अभी कहाँ है और भविष्य में कहाँ जाएगी। स्पर्श कहाँ तक टच कर सके उसे कहते हैं स्पर्शन, ठीक है। पथ संख्या क्षेत्र स्पर्शन, काल, काल का मतलब तो उसका टाइम पीरियड है ना, ठहरने की मर्यादा वो कहलाता है काल। अंतर किसे कहते हैं? अंतर कहते हैं उस डिस्टेंस को कहते हैं वैसे तो अंतर, लेकिन टाइम डिस्टेंस वो कहलाता है अंतर। ये तो टाइम डिस्टेंस नहीं समझ में आया, टाइम डिस्टेंस मतलब आपका घर कितना दूर है, बोले 45 मिनट की दूरी पर, कि नहीं नहीं वो टाइम डिस्टेंस नहीं। टाइम डिस्टेंस का मतलब एक चीज हुई है, वो चीज यदि छूट गई तो दोबारा वो चीज कितने समय में होगी, ये जो बीच का काल का अंतर है इसे कहते हैं अंतर। नहीं समझ में आया अभी? गैप। देखो मैं समझाता हूँ, ऐसा मोटा मोटा समझो आप, जैसे सम्यक दर्शन एक बार किसी व्यक्ति को हुआ, छूट गया, अब दोबारा सम्यक दर्शन कितने टाइम में होगा वो काल कहलाता है अंतर। अब ये मिनिमम अंतर कितना हो सकता है और मैक्सिमम अंतर कितना हो सकता है? मिनिमम अंतर होगा अंतर्मुहूर्त का, माने एक बार सम्यक दर्शन छूट गया तो दोबारा अंतर्मुहूर्त में सम्यक दर्शन हो सकता है, ये मिनिमम गैप पड़ा इसे कहेंगे अंतर। और मैक्सिमम अंतराल कितना हो सकता है? कितना? अर्ध पुद्गल परावर्तन का भी गैप हो सकता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन कितना बड़ा काल है? ये क्या कह दिया? अर्ध पुद्गल, आधा पुद्गल, अर्ध अर्ध पुद्गल परावर्तन, ये क्या चीज है अर्ध पुद्गल परावर्तन?
बहुत जीरो जीरो मल्टीप्लाई,
अरे क्या जीरो जीरो मल्टीप्लाई करेंगे हम, जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई कर लो जीरो ही आता है। क्या क्या करें बोलो, किसको किससे मल्टीप्लाई करें। अनंत काल है, अनंत काल पुद्गल परावर्तन का काल, लेकिन फिर भी एक लिमिट आ गई है। इतना अंतराल हो सकता है सम्यक दर्शन छूटने के बाद दोबारा सम्यक दर्शन होने में, फिर अंतर समझ में आ गया। काल के गैप को कहते हैं अंतर। अंतर के बाद में क्या शब्द दिया, भाव। भाव तो आप जानते हैं, परिणामों को कहते हैं भाव। औपचमिक, कायिक, क्षयोपचमिक, औदयिक, पारिणामिक के पांच भाव हैं। तो ये जिसकी चर्चा चल रही है, जिस तत्व की चर्चा चल रही है, जीव तत्व की है, अजीव तत्व की चर्चा है, आस्त्रवादी तत्वों की चर्चा है, तो बोले कौन सा भाव है पांच भावों में से, ये पहचानना। फिर अल्प बहुत्व, अल्प बहुत्व कहलाता है उनमें कंपैरिजन। ये अल्प बहुत्व है, किसकी तुलना में कौन ज्यादा है और कौन कम है, बस इस कंपैरिजन का नाम है अल्प बहुत्व। देखो भाई, मुझे पता है ये जो दो सूत्र मैंने पढ़े, यद्यपि मैं पहले ही कह चुका हूँ आपको, थोड़े से कठिन से लगते हैं, लेकिन फिर भी शिष्य को भी कठिन लगे थे। उमा स्वामी आचार्य के सामने जो प्रश्न पूछ रहा था, उसको भी लगा कि यार ये क्या बता रहे हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। महाराज ये सब आप बता तो रहे हो, लेकिन हम समझेंगे कैसे इनको। तो महाराज ने पता है क्या कहा, आगे 9 नंबर का सूत्र दे दिया, मति श्रुतावधि मने पर्याय केवलानी ज्ञानम, डोंट वरी। क्या क्या कह दिया, तुम चिंता मत करो, ज्ञान है 5 जानने के लिए, मति श्रुत अवधि मने पर्याय केवल, ये 5 तरह के ज्ञान है। सूत्र बोलिए, मति श्रुत अवधि मने पर्याय केवलानी ज्ञानम, पर्याय नहीं, पर्याय शब्द होना चाहिए, अशुद्ध है ये, या आकी मात्रा इसमें एक्स्ट्रा लगी है, सुधार लेना। मति श्रुतावधि मन है पर्याय केवलानी ज्ञानम, मति श्रुतावधि मन है पर्याय केवलानी ज्ञानम, केवलानी केवल ज्ञानी नहीं, केवल ज्ञानी नहीं, केवलानी है और ज्ञानम, यानी ज्ञान के 5 प्रकार हैं। ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। आपके पास में कितने हैं, 1 से काम नहीं चलता है। भगवान के पास में कितने ज्ञान है, जैसा 5 ही होंगे, एक ही है भगवान के पास में, एक ही, और आपके पास में 2। भगवान के पास में 1 और हमारे पास में 2। हाँ भाई ऐसा ही है, सच में ऐसा ही है स्वरूप, क्या करें। भगवान के पास में 1 है, वो 1 है केवल ज्ञान, वो 1 ही होता है, वो अकेला ही होता है। माने जहाँ केवल ज्ञान होता है वहाँ दूसरे ज्ञानों की जरूरत नहीं होती, और हमारे पास में 2-2 होते हुए भी हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। 5 ज्ञान है, 5 ज्ञानों का स्वरूप इस पूरे अध्याय में धीरे धीरे समझाएंगे। मैं संक्षेप में समझाऊंगा अभी, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। पहले 5 नाम याद हो गए, पहले का नाम मति, दूसरे का, तीसरे, चौथा, 5वां केवल ज्ञान, ठीक है। मति क्या होता है, बुद्धि है, मति क्या चीज है, इसमें समझाएंगे आगे। वैसे तो इतना समझ लो आप मोटा मोटा, अभी इंद्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान होता है उसका नाम है मति ज्ञान। 5 इंद्रियों से और मन से जो ज्ञान होता है वो है मति ज्ञान। मति हो गया स्पर्शन, रसना, ग्रहण, चक्षु, कर्ण, 5 इंद्रियों से जो भी ज्ञान होगा ना वो मति है। 2nd ज्ञान का नाम है श्रुत ज्ञान। ये श्रुत ज्ञान क्या चीज है, सुनने से जो होगा वो श्रुत ज्ञान है, ऐसा समझते हैं बहुत सारे लोग, उनमें आप लोग भी शामिल हैं। अच्छा, सुनने से यदि श्रुत ज्ञान होगा तो हम आपसे पूछ रहे हैं एकेंद्रीय जीवों के कितने ज्ञान है, मतीश होते हैं, दोनों हैं, एक इंद्रियों के दोनों हैं। मुकुंद भाई कह रहे हैं दोनों हैं भाई, मतीश रुत। तो एक इंद्रिय जीव सुन सकता है या नहीं, दो इंद्रिय सुन सकता है या नहीं, तीन इंद्रिय सुन सकता है या नहीं, नहीं सुन सकता है। कैसी बातें कर रहे हो आप, तीन इंद्रिय सुन नहीं सकता है। फिर तो एक चीटी तड़प रही थी, मैंने देखा एक भाई साहब उसको ठमोकार मंत्र सुना रहे थे। चीटी तो तीन इंद्रिय है ना, तो सुन सकती है या नहीं? तो वो भाई साहब क्या गलत कर रहे थे क्या, ठमोकार मंत्र सुना रहे थे उसको? भाई साहब ने ऐसा पढ़ा था शास्त्रों में, मरते समय किसी को ठमोकार मंत्र सुना दो वो मर के देव हो जाता है, और देव हो जाता है फिर आकर के अपनी हेल्प भी कर सकता है। हमने कई एग्जाम्पल ऐसे सुने हैं, पढ़े हैं शास्त्रों में, मरते हुए उनको कान में ठमोकार मंत्र सुना दिया वो मर के। एक तो बहुत प्रसिद्ध है, कौन सा बताओ, बतलाओ भाई साहब, कौन सा ऐसा प्रसिद्ध है जिनको ठमोकार मंत्र किसी ने सुनाया और फिर वो मर करके फिर कुछ हो गए? बहुत फेमस है, सब जानते हैं, पार्श्वनाथ राजकुमार जब थे तो उन्होंने जलते हुए नाग नागिन को कान में ठमोकार मंत्र सुनाया और फिर क्या हुआ, वे जो नाग और नागिन थे वे मर गए झुलस करके ठमोकार मंत्र सुनाने से, मर गए। बचे नहीं फिर ठमोकार मंत्र सुनाया तो, मतलब ठमोकार मंत्र सुनाया फिर भी नहीं बचे, बचाने के लिए थोड़ी ना सुनाया था, परिणामों की शांति के लिए सुनाया था, परिणाम आकुलित व्याकुलित नहीं हो। अच्छा ठमोकार मंत्र ही सुनाया होगा पक्का, सबको यही कहना है ठमोकार मंत्र सुनाया था। मैं आपसे पूछता हूँ, तीर्थंकर के जीव नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियाणम बोलते हैं, नमो वैजयानम नमो लोहित सभ्यतावनम बोलते हैं, नमस्कार करते हैं पांच परमेष्ठियों को? अच्छा ठमोकार मंत्र उस समय था पार्श्वनाथ स्वामी के जमाने में, यही वर्ड से 2000 साल पहले शास्त्र में लिखा है। तो श्रुत पंचमी है कल, जानते हैं आप, कल करेंगे चर्चा श्रुत पंचमी के बारे में, बहुत बड़ा पर्व है एक श्रुत पंचमी नाम का पर्व। श्रुत पंचमी सुना मोहित जी कभी, ये क्या होता है, ये कौन सा फेस्टिवल है? हाँ शास्त्र की पूजन होती है, ज्ञान पंचमी भी कहते हैं। श्रुत शास्त्र जैन परंपरा, दिगंबर जैन परंपरा मुख्य रूप से शास्त्र सबसे पहले षटखंडागम जो पहला ग्रंथ है वो जिस दिन लिख करके पूरा हुआ था वो श्रुत पंचमी का दिन था, ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी का दिन। कल करेंगे उसकी चर्चा अपन। मुझे तो ये बतलाना ठमोकार मंत्र 2000 साल पहले लिखा गया तो पार्श्वनाथ स्वामी ने क्या सुनाया? खैर जो भी सुनाया हो सुन करके गया नाग नागिन, रणेंद्र हो गए, पद्मावती हो गई, स्वर्ग में चले गए थे ना। और कोई एग्जाम्पल कई है ऐसे क्या? तो आज से क्या हुआ, वो धर्मेंद्र और पद्मावती जब पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर उत्सर्ग हो रहा था तो दौड़े दौड़े आ गए स्वर्ग से, धर्मेंद्र पद्मावती आए थे ऊपर से। अब कितना बचाया था क्या हुआ था वो एक अलग मैटर है, बचा था बचाने की जरूरत तो थी नहीं उनको, पार्श्वनाथ स्वामी को कहां जरूरत थी कि कोई आकर के बचाए। अच्छा यदि धर्मेंद्र पद्मावती नहीं आते तो क्या होता बेचारे पार्श्वनाथ का? भाई साहब वो तो राइट टाइम पर आ गए दोनों, राइट टाइम पर आ गए, यदि वो नहीं आते तो क्या होता भाई साहब? कुछ नहीं होता, उनका खुद का पुण्य कुछ भी नहीं होता पार्श्वनाथ स्वामी का। तो फिर धर्मेंद्र और पद्मावती बेकार ही आए, वो अपने भाव से आए, अपने राग भाव से आए, बचाने के भाव से आए जरूर थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने बचाया था ऐसा नहीं है। तो समझ में आ रही है बात, बचाने के भाव से आए थे ये फैक्ट है। उन्होंने सुनाया था, उपदेश दिया था, वे मर करके धर्मेंद्र पद्मावती हो गए थे, जब कमठ ने उत्सर्ग किया तो वे दोनों दौड़े आए थे, ठीक है ना, एक ने उठा लिया एक ने ऊपर से फन लगा दिया, ठीक है वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पार्श्वनाथ स्वामी इतने कमजोर नहीं थे कि उन्हें किसी के सहयोग की जरूरत पड़े क्या? आप यदि ये समझते हैं कि उन्होंने बचाया दोनों ने तो इसका मतलब आप पार्श्वनाथ भगवान का अपमान कर रहे हैं। यदि आप ये कह रहे हैं कि उन दोनों ने उनको बचाया है तो इसका मतलब सीधी सीधी सी बात है कि आप इस बात को मान रहे हैं कि पार्श्वनाथ भगवान में कुछ दम नहीं है।
बोलो
क्योंकि उनको भी जब कोई बचाने वाला आ गया तो उनका भी हो गया ना ऊपर बॉस, तो पार्श्वनाथ भगवान के बॉस कौन? अरे भगवान के बॉस कौन होंगे, भगवान के भी ऊपर है क्या कोई? चलिए बात क्या चल रही थी यहाँ पर, श्रुत ज्ञान। इसका मतलब श्रुत ज्ञान किनके होता है? एक इंद्रियों के भी होता है, बिना सुने भी। दो इंद्रियों के होता है, उनके भी कर्ण नहीं है। तीन इंद्रियों के भी कर्ण नहीं है, चार इंद्रियों के भी कर्ण नहीं है, उसके बावजूद भी उनके श्रुत ज्ञान है। इसका मतलब श्रुत ज्ञान सुनने से होने वाले ज्ञान को नहीं कहते। क्या सब? यदि सुनने से होने वाला ज्ञान श्रुत ज्ञान कहलाता तो फिर तो पंचेंद्रिय के ही होना चाहिए था। पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन पंचेंद्रियों के नहीं, एक पेड़ पौधों के भी श्रुत ज्ञान है, जलकायिक जीवों के भी श्रुत ज्ञान है, कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छरों के भी श्रुत ज्ञान है। तो श्रुत ज्ञान होता क्या है ये समझाओ पंडित जी आप, तो श्रुत ज्ञान क्या है? मति ज्ञान के बाद जो कुछ भी विशेष जानना होता है वो श्रुत ज्ञान का काम है। कल समझाएंगे इसको और विशेष, क्योंकि आगे सूत्र कह रहे हैं उमा स्वामी आचार्य ने, आगे सूत्रों में कही है ये बात, उसको समझाया है। तो अपन यही चर्चा क्यों करें, जब वो सूत्र आएंगे तब अपन उनकी बात करेंगे। अभी तो इतनी बात हमारे तो समझ में आ गई है कि पहला होता है मति ज्ञान, और मति ज्ञान के बाद में फर्दर नॉलेज जो होगी वो कहलाएगा श्रुति ज्ञान। जब भी श्रुति ज्ञान होगा मति ज्ञान के बाद होगा। श्रुति ज्ञान विशेष ज्ञान है, मति ज्ञान सामान्य ज्ञान है, ठीक है? हमारे दोनों ज्ञान है, मति भी है और श्रुति भी है। नंबर तीन, तीसरे नंबर के ज्ञान को कहते हैं अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान क्या होता है? अवधि शब्द का अर्थ क्या है? अवधि मतलब मर्यादा, अवधि मतलब यहां तक बस, इस एरिया तक, इतने टाइम तक, ठीक है, इतनी वस्तुओं तक, इतने भावों तक, इतने भवों तक, माने लिमिट, वो है अवधि। जिस ज्ञान में लिमिटेशंस हैं वो अवधि ज्ञान है, लेकिन लिमिटेशंस होने के बावजूद भी ये अवधि ज्ञान इतना विशेष ज्ञान होता है कि इस अवधि ज्ञान के माध्यम से यहाँ बैठे बैठे बहुत विशेष बातों को जान सकते हो। क्या बैठे बैठे आपको पता लग जाए कल क्या होने वाला है, आपको यहाँ बैठे बैठे आपको मालूम चल जाए दो साल बाद में क्या होगा, तो आज आपको दिखने लग जाए, ये अवधि ज्ञान है। आपको दूर से पता लग जाए वहां क्या हो रहा है, आप यहाँ बैठे हैं और आपको पता लग जाए कि आपके घर पर क्या हो रहा है, इसका नाम अवधि ज्ञान है। एक दिन मैं ऐसे ही समझा रहा था मुकुंद भाई, ऐसा अवधि ज्ञान, तो शायद बॉम्बे की कहां की बात है, तो एक सज्जन बीच में खड़े हुए, 20-22 साल का लड़का होगा कोई, बोले पंडित जी अवधि ज्ञान तो हमारे को ही है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हमारे घर में क्या हो रहा है अभी हमारे को दिखता है, यहाँ कैमरे लग रहे हैं क्या? और वो कैमरे बिल्कुल यहाँ से एक्सेस करते हैं हम तो बिल्कुल बराबर दिखता है हमारे को, है ना अवधि ज्ञान? मैंने कहा भाई अवधि ज्ञान से अकेला घर ही नहीं दिखता है, और भी बहुत कुछ दिखता है। आप देखो कैमरे से भी ये बात सिद्ध होती है, जब कैमरे लगे हो तो हम उन बातों को दूर क्षेत्र से भी जान लेते हैं ना, तो इसका मतलब कोई विशेष ज्ञान ऐसा भी होगा जो बिना कैमरे के भी जान ले, बस उसका नाम है अवधि ज्ञान। मति हो गया, श्रुत हो गया, अवधि हो गया। यहाँ बैठे बैठे इंडिया भी देख सकते हो आप, घर भी देख सकते हो, टीवी की तरह। टीवी टीवी की क्या बात करें, टीवी में क्या दम है, ये तो सब कुछ दिखता है, लाइव जैसा दिखता है इस अवधि ज्ञान के माध्यम से। चौथा एक और ज्ञान है जिस ज्ञान का नाम है, हाँ बोलो, जाति
स्मरण
ज्ञान। हाँ जाति, नहीं जाति स्मरण ज्ञान और अवधि ज्ञान में फर्क है, बहुत फर्क है जाति स्मरण ज्ञान में। आपको कितने काम अति ज्ञान में आता है? आपके आपके
हाँ मेरे से पूछा था शायद, है ना। जाति स्मरण ज्ञान मति ज्ञान का प्रकार है। जाति स्मरण ज्ञान अवधि ज्ञान में नहीं होता। अवधि ज्ञान बहुत विशेष ज्ञान है। अवधि ज्ञान पास्ट और फ्यूचर की सब बातों को जान सकता है, जबकि जाति स्मरण ज्ञान सिर्फ पास्ट को जानेगा और अपना ही जानेगा। जाति स्मरण ज्ञान सिर्फ अपना ही जानेगा और पास्ट को जानेगा और पिछले भवों की बातों को जान सकता है, जबकि अवधि ज्ञान अपने को तो जानेगा ही, जान ही सकता है, दूसरों को भी जान सकता है और पास्ट को भी जान सकता है और फ्यूचर को भी जान सकता है। अवधि ज्ञान विशेष ज्ञान है। जाति स्मरण, स्मरण शब्द है उसके साथ में जुड़ा हुआ। क्या शब्द है? जाति स्मरण। जाति स्मरण माने स्मरण कब होता है? स्मरण कब होता है? जब पिछली बात याद आती है उसको तो स्मरण कहते हैं आप। इसका मतलब जाति स्मरण शब्द ही इस बात को बतला रहा है कि ये पास्ट वाला होगा। तभी आप ऐसा कहते हैं मेरे को याद है कि मैं कल क्या बनाने वाला हूँ, मेरे को याद है कि मेरे 5 साल बाद में एग्जाम में कितने नंबर आएंगे, याद है आपको? मेरे को स्मरण है इस बात का कि 5 साल बाद में मेरे उस एग्जाम में इतने नंबर आएंगे। क्या क्या बात कर रहे हो? स्मरण शब्द ही इस बात को बतलाता है, पास्ट से जुड़ी हुई चीज है। जो हमारा ज्ञान पास्ट से जुड़ा हुआ हो उसे कहते हैं स्मृति। समझ में आ गई? स्मृति किसे कहते हैं? और भविष्यवाणी नहीं, वो सब मति श्रुति ज्ञान है। हाँ नहीं है। अरे क्या विशेष ज्ञान है उसमें? 10 में से 5 तो हमारी सच्ची हो जाती, हमें भी मान लो अवधि ज्ञान। हाँ सही कह रहा हूँ। पहले एग्जाम चलते थे उस समय, अभी पता नहीं क्या पैटर्न सब बदलते रहते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन आते थे एग्जाम में, 5 करने होते थे, हम 10 तैयार करके जाते थे और 5 मिल जाते थे। सही कह रहा हूँ? कॉलेज में जो एग्जाम होते थे 10 में से 5 क्वेश्चन करने होते थे, तो कितने तैयार करके, 10 तैयार करके जाते थे पूरी किताब में से और 5 मिल जाते थे हमारे को वहां, तो अवधि ज्ञान था ना। अरे 10 के 10 मिल जाए तो केवल ज्ञान, और 5 मिले तो आधा ज्ञान, अवधि ज्ञान। कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये ज्योतिष ज्ञान सच्चा ज्ञान है, लेकिन ज्योतिष ज्ञान मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान में ही आता है। ज्योतिष ज्ञान अवधि ज्ञान की सीमा में नहीं आता है, क्योंकि अवधि ज्ञान अनुमानित नहीं है। ज्योतिष ज्ञान निमित्त ज्ञान है। ज्योतिष ज्ञान तो ऐसा ज्ञान है कि आप अपना हाथ बढ़ाएंगे क्या तो मुझे रमेश भाई का भविष्य नहीं दिखेगा। ज्योतिष ज्ञान तो ऐसा ही ज्ञान है ना। कामेष्टि क्या चीज है बतलाओ मेरे को? ये निमित्त ज्ञान है। हाथ की रेखा देख करके बतला दिया, सर देख करके बतला दिया, लाट देख करके बतला दिया, भूमि देख करके बतला दिया, ये सब निमित्त ज्ञानों के अंतर्गत है। हमारे यहाँ शास्त्रों में निमित्त ज्ञानों की भी बहुत चर्चा की है। झूठा नहीं होता निमित्त ज्ञान, निमित्त ज्ञान सच्चा होता है। निमित्त ज्ञान मतलब क्या? किसी वस्तु को देखकर किसी को पहचान लेना, या किसी वस्तु को देखकर किसी व्यक्ति को देखकर किसी परिस्थिति को देखकर किसी घटना को देख करके फ्यूचर का अनुमान जो लगा लिया जाता है वो है निमित्त ज्ञान। भद्रबाहु स्वामी ने एक बच्चे को पलने में झूलते हुए देखा और रोते हुए देखा और उसकी आवाज सुनकर के घोषणा कर दी 12 साल का अकाल पड़ेगा उत्तर भारत में। अकाल की घोषणा कर दी उन्होंने, 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा। अकाल पड़ा 12 साल, 2000 साल पहले की घटना है, 2100 साल पहले की घटना है। बोलो या ये घोषणाएं हो जाती है इस तरह की। जमीन देख करके लोग बता देते हैं अंदर कितनी कितनी नीचे जाकर के पानी है, इस जमीन में पानी नहीं है, जमीन में तो नीचे तेल है, जमीन देख करके बतला दिया। आकाश देख करके बतला देवे, आवाज सुन करके बतला देवे, ऐसे बहुत होते हैं। इस तरह के प्रयोग हमने देखे हैं अनेक बार। हमारे जयपुर की सच्ची घटना है, एक दरवाजे पर बारात खड़ी थी और दूल्हा वो क्या कहते हैं आप, तोरण, क्या कहते हैं तोरण बोलते हैं क्या गुजराती में, क्या कहते हैं रमेश भाई? सही ना भाई, घोड़ी पे बैठ करके आया था और दरवाजे पर वो बंधा रहता है कुछ, वो ऐसा क्या करते
है, कुछ भी जो भी है, दरवाजे पर बड़ा खड़ी थी कुल मिलाकर के, इतना समझ लो, और स्वागत के लिए लड़की वाले खड़े हुए थे अंदर। एक व्यक्ति ने कहा दूल्हा कैसा है,
दूसरे ने देखा और देख करके कहा ये क्या मुर्दे से शादी कर रहे हो,
क्या कहा मुर्दा, मुर्दा तो जानते डेड बॉडी, ये क्या कह रहे हो आप, अरे यार शादी हो रही है, शुभ शुभ बोल, ऐसे ऐसे ऐसी बातें क्यों कह रहा है, नहीं सही कह रहा हूँ मैं, कि कैसे कह रहे हो तुम कि इसके सर के ऊपर जो तिलक लगाया है वो सूखा नहीं है अभी, कुमकुम जो लगाया है ना सर पर वो सूखा नहीं है, दो घंटे हो गए लगे हुए, इसका मतलब इसकी बॉडी में अंदर जो तेज है, जो उष्णता है, जो गर्मी है, वो खत्म हो गई है, ये पौन घंटे से ज्यादा जिएगा नहीं ये व्यक्ति। और सच्ची घटना बिल्कुल, वो अंदर जाकर के उसके वो सात फेरे नहीं हुए, उससे पहले उसका स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास के नरकवास जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन मतलब खत्म हो गया, सच्ची घटना है। ज्योति ज्ञान होता है ऐसा, निमित्त ज्ञान होते हैं ऐसे, और सच्चे ज्ञान होते हैं। कल मत जाना किसी ज्योतिषी के पास में, कुछ बता रहा हूं मैं तो, मतलब ज्योतिष ज्ञान सच्चा ज्ञान है, लेकिन ज्योतिषी कितने सच्चे हैं, ज्योतिष ज्ञान सच्चा ज्ञान है लेकिन ज्योतिषी कितने सच्चे हैं ये मैं नहीं कह सकता। तो उनको तो अपनी दुकान चलानी है, उनको तो अपना काम करना है, खोल करके बैठे हैं वो, ऐसे ही थोड़ी ना, और फिर कुछ बातें अनुमान भी होती है, कुछ बातें थोड़ी बहुत कुछ नॉलेज होती होगी, कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, कुछ तुक्का फेंकते हैं, कुछ चलता है, ऐसे ही चलता है कुछ भी काम, उनकी चलती रहती है दुकानदारी, और कोई बात नहीं। देखो इतना तो अनुमान हम भी जानते हैं, एक गांव में क्या हुआ, एक व्यक्ति ने कहा, एक बोर्ड लगा दिया अपने यहाँ, टेंथ के एग्जाम में पास कराने की गारंटी। क्या क्या कहा, टेंथ के एग्जाम में पास कराने की गारंटी, पैसा लगेगा लेकिन कितना, मात्र 100 रुपए में, और गारंटी क्या है कि यदि पास नहीं हो तो 100 रुपए रिफंड है। बोलो क्या करें, आपको करवाना है बच्चे, क्या 100 रुपए में क्या फर्क पड़ता है यार, ठीक है फिर क्या हुआ होगा, क्या कुछ नहीं किया उसने, कि आपकी कोई पहचान है, अंदर की बात बताऊं मोहित जी, कोई पहचान वहचान कुछ नहीं है, क्या आपने को कुछ करना नहीं है, तो क्या करना है कि बोर्ड का रिजल्ट 60% जाएगा, 60% पैसे बच जाएंगे बस। जितने अपने आप पास होने हैं क्या, और जितने फेल हो गए कि कोई बात नहीं भैया पैसे वापस ले जाओ, ईमानदारी का काम है बिल्कुल, बेईमानी बिल्कुल नहीं है। ऐसे ज्योतिषियों की बात नहीं है भाई, ये ज्योतिष ज्ञान ये सच्चा ज्ञान है, लेकिन ज्योतिषी सच्चे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कोई ईमानदार भी हो सकते हैं, कोई लोभी भी हो सकते हैं, लालची भी हो सकते हैं, लेकिन ये मति श्रुति ज्ञान का प्रकार है, और मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान जो होते हैं, ये मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान ये अस्पष्ट ज्ञान है, स्पष्ट नहीं है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान में क्लियरिटी नहीं होती, हमारे ज्ञान में क्लियरिटी नहीं है, जो कुछ भी हम जान रहे हैं डायरेक्ट नहीं जान सकते, क्लियर नहीं जान सकते, इसमें बहुत तरह के चैलेंज हैं, प्रॉब्लम्स हैं मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के माध्यम से जानने में। आंखें बराबर होनी चाहिए, अब आंखें बराबर नहीं हुई तो फिर चश्मा चढ़ेगा, फिर चश्मा बराबर होना चाहिए, फिर चश्मा तो बराबर है लेकिन अंदर में जानने की आंख में ताकत ही नहीं बची है, अब कितना भी चश्मा चढ़ा लो दिखता ही नहीं है, वो क्या करें। फिर रोशनी बराबर होनी चाहिए, लाइट बराबर हो, डिस्टेंस बराबर हो, तब जाकर के दिखता है ना, बोलो अभी अभी हमें इसको पढ़ना है, हैं? तो इतनी डिस्टेंस से पढ़ पा रहे हैं और इतनी डिस्टेंस से बोले यहां से भी दिख रहा है, थोड़ा और ज्यादा दूर ले जाओ, अब नहीं दिख रहा, ये क्या हुआ कि दूर से नहीं दिखता, कि पास से दिखता है तो पास से, अब बताओ अब भी नहीं दिख रहा, इतने पास से भी नहीं दिखता, तो एक निश्चित दूरी होनी चाहिए ना, आंख से इतना दूर होगा और बहुत ज्यादा दूर भी नहीं होगा, कितनी तरह की लिमिटेशन है। आंख के ऊपर एक बाल आ गया तो भी नहीं दिख रहा है, ये इंद्रिय ज्ञान की कमजोरियां हैं। सब करेंगे चर्चा अपन, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान वो हुए, मति और श्रुत में ये सब ज्योतिष ज्ञान, भविष्य ज्ञान समझ लो आप, ये जाति स्मरण ज्ञान, निमित्त ज्ञान, ये सारे ज्ञान मति श्रुत ज्ञान में शामिल है। गर्भित हो गए उन्हीं ज्ञान हो गए। अवधि ज्ञान बहुत स्पेशल ज्ञान है, सबके प्रभाव से होता है, ज्ञानियों को होता है, मिथ्या दृष्टियों को नहीं होता है, विशेषकर मनुष्य गति के जीवों में, मनुष्य त्रियंतों में, देवगति के जीवों में होता है, नारकियों में होता है। उसकी चर्चा अपन करेंगे, कल तक या परसों तक चर्चा आई जाएगी 100%, कल भी आ जाएगी। अच्छा, अवधि के बाद में चौथे नंबर का ज्ञान है जिसका नाम है मनय पर्यय। चौथे नंबर के ज्ञान का नाम क्या है? मनय पर्यय। ये और स्पेशल हो गया। ये कैसा है? ये मनय पर्यय ज्ञान है जो मन की बात को जान लेता है, सामने वाले के मन की बात को जान ले रहे, उसका नाम है मनय पर्यय ज्ञान। मुझे मालूम है आप लोग कई बार महसूस करते हैं ऐसा कि हमें पता लग जाती है सामने वाले के मन की बात, तो मनय पर्यय हो गया क्या? मनय पर्यय ज्ञान मुनि राजाओं को ही होता है, नियम है 100%, किसी भी गृहस्थ को नहीं हो सकता, भोग वालों को नहीं हो सकता, संयोग वालों को नहीं हो सकता, परिग्रहधारियों को नहीं हो सकता, त्यागियों को होगा, पीछी कमंडल वालों को होगा, मुनिराज को होगा, छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका में होगा। मने पर्यय ज्ञान कौन सा ज्ञान? मने पर्यय नाम की एक रिद्धि है, एक तप है, जो मुनिराजों के जीवन में ही हो सकता, हो सकता है, हर मुनिराज को होगा ऐसा नहीं, सभी मुनिराजों को ऐसा नहीं, लेकिन जब भी मने पर्यय ज्ञान होगा तो मुनिराज को ही होगा। दूसरे के मन की बात को जान लेना यह मने पर्यय ज्ञान का काम है। यह मने पर्यय ज्ञान भी द्रव्य की मर्यादा, क्षेत्र की मर्यादा, काल भाव और भाव की मर्यादा पूर्वक जानता है, तो उसमें भी लिमिटेशन है। बोलिए,
कोई मुनिराज तो हुआ मने पर्यय,
हाँ,
काल भाव काम के वो गए देवलोक में, तो आत्मा के ज्ञान वो साथ में नहीं आता,
नहीं जाएगा साथ में, नहीं जाएगा। आपका ये पूछना है किसी मुनिराज को मने पर ये ज्ञान हुआ, ठीक है, और वो मुनिराज यदि जीवन पूरा हो जाने पर मर के देवलोक में गए, तो उनके साथ में मने पर ये ज्ञान रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा।
देवलोक में तो मुनि है ही,
देवलोक में तो मुनि है, मुनि के होता है मने पर ये ज्ञान। और देखो, हर चीज की एक अपनी अपनी मर्यादा है, जो चीज जिस जगह पर होगी वो उसी जगह पर होगी, उसके आगे पीछे नहीं होगी। जैसे मुनि अवस्था के अंदर मने पर्यय ज्ञान का है, तो मुनि अवस्था के पहले भी नहीं होगा और मुनि अवस्था छूट जाने के बाद भी नहीं होगा, तो उसी अवस्था में हो सकता है वो, है ना। अभी मैं विशेष बात ये बतलाना चाह रहा हूँ इस ज्ञान के बारे में, वैसे पांच ज्ञानों के बारे में चर्चा करनी है अपने को आगे, कल परसों इन्हीं के बारे में चर्चा होगी और विशेष बातें होगी इनके संदर्भ में। मने पर्यय ज्ञान सामने वाले व्यक्ति के मन की बात को जाने इतना मात्र ही नहीं है, ये हल्का ज्ञान नहीं है, ये सामने वाले के मन की बात को तो जान ही लेता है, लेकिन कोई व्यक्ति सामने नहीं हो, दूर हो, तो उसके मन की बात को भी जान सकता है। यहाँ बैठे बैठे कोई 100 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर यहाँ हम बैठे हैं, और इंडिया में कोई व्यक्ति है, तो इंडिया में बैठे हुए व्यक्ति के मन में अभी क्या चल रहा है ये हम अभी जान सकते हैं यहाँ बैठे बैठे, हम मतलब मने पर ये ज्ञानी। दूरी क्षेत्र से हुई,
मन पर ज्ञान में खुद को नहीं जान सकते ना, खाली दूसरे
को। खुद को जानने की बात करोगे तो आप जानते ही हो, फिर तो सभी मने पर ये ज्ञानी हो जाएंगे। भाई मेरे मन में क्या है ये तो मैं जानता ही हूँ ना, मेरे मन की बात को मेरे अलावा और कौन जानता है? आपके मन की बात को आप जानते हो या नहीं? आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या है ये तो आप जानते ही हो ना, तो अपने मन की बात को जानने में मने पर ये ज्ञान की क्या महिमा है? बात महिमा तो तब है जब किसी ने कुछ कहा नहीं और दूसरे के मन की बात पता लग गई, तब तो महिमा वाली बात है। तो ये मने पर ये नाम का ज्ञान सामने वाले के मन की बात को जानता है, एक पॉइंट। कोई 100, 200, 500, 1000 किलोमीटर दूर कहीं बैठा हुआ हो तो उनके मन की बात को भी जान लेता है, सेकंड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट, काल की मर्यादा की अपेक्षा से बात करो तो 5 साल पहले आपने क्या सोचा था ये भी मने पर ये ज्ञानी जान सकता है, और 10 साल बाद आपके मन में क्या विचार आएगा ये भी मने पर ये ज्ञानी जान सकता है। मन में क्या आएगा उस मन की बात को अभी जान ले, यहां बैठे हुए ये मने पर ये ज्ञान काल की मर्यादा भी है भाई साहब, क्या गजब है, चमत्कारिक है ये काम। ये मन कैसे जान लेते हैं भविष्य को। देखो एक मुनिराज बैठे हैं ध्यान अवस्था में, महेंद्र भाई ने आकर के पूछा साहब ये सब सेंटर चलता है यहाँ और क्या करें, और हमारे तो बच्चे नहीं आते हैं, मान लो लोग कमाते हैं क्या होगा। मुनिराज बैठे हैं मने पर ये ज्ञानी कि तुम चिंता मत करो भाव, हमारे को इस बच्चे के बारे में बहुत चिंता है, क्या घर बैठा है वो, उसके बारे में इतना विकल्प आता है, आता ही नहीं है मंदिर। हम खूब कह के करके मर के पच गए लेकिन फिर भी वो समझने के लिए नहीं आता। दुनिया हमसे आकर के सुनती है समझती है लेकिन वो नहीं सुनता। मने पर ये ज्ञानी मुनिराज आपको सांत्वना दे सकते हैं, चिंता मत करो। कि क्या बात कर रहे हैं, चिंता का विषय है आप कह रहे हो चिंता मत करो, कि नहीं मैंने देख लिया है 10 साल बाद में एक ऐसी घटना घटेगी, उस घटना से उसका मन परिवर्तित हो जाएगा और उसके बाद में वो रोजाना यहाँ आकर के बैठने लगेगा, समझेगा भी और औरों को समझाएगा भी। बता सकते हैं कि नहीं मुनिराज, मने पर ये ज्ञान मन के माध्यम से जान ले रहे, बता देते हैं। हाँ बोलिए भाई। सोचना पड़ता है, ऑटोमेटिक नहीं होता है, ऑटोमेटिक नहीं होता है, सोचना पड़ता है उनको। माने जब भी मने पर ये ज्ञान होगा तो सोचना पड़ेगा, जब भी अवधि ज्ञान भी होगा वो भी सोचना पड़ेगा। माने आपका कहने का मतलब उनको विकल्प नहीं करना पड़े और अपने आप ही दिख जाए, तो अपने आप किसका दिखेगा, किसका भविष्य। ये तो जिसके बारे में जानने के लिए हमारे दिमाग में विकल्प खड़ा हुआ ना, इनके बारे में जानूं बस, तो फिर वहां उन्होंने अपने उपयोग को अपने बुद्धि को वहां लगाया और वो जान लिया उन्होंने। अवधि ज्ञान भी ऐसा ही है, मने पर ये ज्ञान भी ऐसा ही है। माने ये दोनों उपयोग लगाना पड़ेगा वहां, उपयोग लगेगा तो काम होगा। समझ में आ रही बात, चार हो गए, पांचवा ज्ञान बतलाओ क्या नाम था। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान के संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान है केवल ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान है केवल ज्ञान। सब कुछ जो भी घटनाएं घटती है, जो भी घटनाएं घट चुकी है, जो घटने वाली है, आज के 100 साल पहले, अनंत काल पहले भी, अनंत काल बाद में भी, एक एक वस्तु का परिणमन जिस ज्ञान में स्पष्ट झलकता हो उस ज्ञान का नाम है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान में उपयोग नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि केवल ज्ञान जस्ट लाइक ए बिग मिरर, इतना बड़ा मिरर है क्या कि जिस मिरर में सब दिखता है, सब कुछ ऑटोमेटिक झलकता है। लेकिन ध्यान रखना, झलकते हुए भी देखना नहीं चाहते, देखते हैं अपने आत्मा को और दिखता है लोकालोक। ये चमत्कार है, सकल ये ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सारे लोकालोक के पदार्थ तो उनके ज्ञान में झलक रहे हैं लेकिन प्रभु तो मात्र अपने ज्ञान में ही, अपने स्वरूप में ही मग्न है। कुछ मतलब नहीं है किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी पदार्थ से, सारे पदार्थों का परिणमन उनके ज्ञान में झलकता है। अब ये सर्वज्ञता को यदि समझना हो ना, तो सर्वज्ञता को समझने के लिए क्रमबद्ध पर्याय समझना पड़ेगा। सर्वज्ञता क्या चीज है, ये केवल ज्ञान क्या होता है, केवल ज्ञान से क्या क्या झलकता है, केवल ज्ञान में क्या क्या बातें आती है, क्या लक्ष्य भाई। केवल ज्ञान में सारी बातें आ जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है जो केवल ज्ञान से छिपी हुई हो। हमारी मौत कब होगी, मौत से पहले क्या क्या अवस्थाएं होगी, मर करके कहां जाएंगे, वहां कितना समय जिएंगे, उसके बाद जीवन पूरा हो जाने के बाद में कहां जाएंगे। इतना ही नहीं, आप जीते जी क्या क्या करेंगे, आप यहाँ बैठे बैठे कब ऐसे ऐसे हाथ करेंगे, क्या कब ऐसे बैठेंगे। टाइम अकेला नहीं, इस वस्तु का परिणमन भी, इसका हिलना डुलना भी, आप कब कौन सा मेहमान आपके घर में आएगा भोजन करने के लिए, आप क्या बनाएंगे, क्या बनेगा और उसमें कब आपसे नमक डबल डल जाएगा, क्या कब बिना नमक के सब्जी बन जाएगी, क्या सब कुछ दिखता है, सब कुछ झलकता है उनके ज्ञान में। भगवान यही जानने के लिए बैठे हैं, अरे जानने के लिए नहीं बैठे हैं, ऑटोमेटिक है प्रक्रिया। मतियान और श्रुतियान इंद्रियों के माध्यम से जानता है, अवधि ज्ञान विकल्प पूर्वक जानता है, मनय परिय ज्ञान विकल्प आने पर सामने वाले के मन की बात को जानता है, और केवल ज्ञान ऑटोमेटिक लोक और अलोक की बातें न केवल प्रेजेंट पास्ट भी और न केवल प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर भी, और कितना लंबा फ्यूचर अनंत काल आगे तक का सब कुछ भगवान के ज्ञान में स्पष्ट झलकता है, उसका नाम क्या है? केवल ज्ञान। कठिन तो नहीं है केवल ज्ञान? कैसे होगा साहब इतनी सारी बातें जानने के लिए कैसे होता होगा केवल ज्ञान? मुकुंद भाई क्या करें, बहुत बहुत सर दर्द है भाई, क्या क्या जाने हम, थोड़ा सा आप ये 8-9 सूत्र आपने बतलाए हैं, ये 9 सूत्रों को जानने में तो ऐसा लग रहा है कि अभी तो कितना जानना बाकी है, और जो सब कुछ जानते होंगे तो उनके माथे में कितना दर्द होगा, कितना कितना जानेंगे वो लोग, क्या क्या जाने, फिर बिस्किट कैसे बनता है, फिर नमकीन कैसे बनती है, पापड़ कैसे बनते हैं, सब कुछ जानते हैं कि नहीं भगवान? केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलकता है कि नहीं? फिर कौन कौन सी मूवी देखते हैं, बाहुबली देखी कि नहीं है? वो झलकती होगी कि नहीं भगवान के ज्ञान में? सारी मूवी झलकती है बाहुबली, आपके यहाँ अमेरिका में भी लगी क्या है? सेकंड वाली भी? हाँ सेकंड की तो बात है, फर्स्ट तो पुरानी हो गई, तो फर्स्ट वाली झलकती होगी या नहीं उनके ज्ञान में, भगवान के ज्ञान में? फर्स्ट वाली भी झलकती है उनके ज्ञान में? अच्छा कौन कौन सी मूवी झलकती होगी? केवल ज्ञान हो जाए तो अपने लोग मजे आ जाएंगे, सारी मूवी एट ए टाइम, सारी मूवी एट ए टाइम चल रही है। हाँ भूतकाल में जितनी चल चुकी है, वर्तमान में जितनी चल रही है, भविष्य में जितनी चलेगी। अरे क्या मूवी की बात कर रहे हो, तुम्हारी ये जो लाइफ है ना, ये पूरी की पूरी पिक्चर झलकती है उनके ज्ञान में, उसका नाम है केवल ज्ञान।
एक क्वेश्चन ये है,
हाँ,
कि यदि तेरहवे गुण स्थान पर जो व्यक्ति पहुंच जाता है,
हाँ,
और नीच में अखंड प्रभु की अपने ही कोई जानने की शुरुआत होती,
हाँ,
तो ये जो बाकी का जो आपने बताया
केवल ज्ञान,
केवल ये जो बाय प्रोडक्ट हो गया ना, उनका भी तो अखंड
अपने को ही जानना है वो। लेकिन क्या है कि लोगों को इंटरेस्ट बाय प्रोडक्ट में ज्यादा होता है, सही में असली चीज खरीदने में इतना इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन गिफ्ट क्या मिल रहा है साथ में मुफ्त में, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है। इसलिए क्या करें भाई, आपको आत्मा की महिमा बतलाएं तो आपको आत्मा की इतनी महिमा नहीं आती है, लेकिन हम ये बतलाएं कि आत्मा को जानने पर ये सारी बातें मुफ्त में जानने को मिलेगी, तो जब हम कहें कि आपको बाहुबली जैसी हजारों मूवी जानने को मिलेगी, तो अच्छा सारी देखने को मिल जाएगी, ये खुश हो जाता है। क्या करें, अरे पिक्चर थोड़ी ना दिखानी है वहां। ये केवल ज्ञान क्यों कहलाता है पता है आपको? संपूर्ण ज्ञान क्यों नहीं कहते इसको? पूर्ण ज्ञान क्यों नहीं कहते इसको? इसको केवल ज्ञान क्यों कहते हैं? केवल एक आत्मा को जानते हैं इसलिए केवल ज्ञानी कहलाते हैं। क्या मुकुंद भाई, केवल ज्ञान क्यों है? केवल एक आत्मा को जानते हैं, केवल ओनली ओनली वन, सिर्फ आत्मा को जानो और कुछ नहीं, सिर्फ इसको जानना है। जैसा लोकालोक, अरे दुनिया को जानेगा तो दुनिया जान नहीं पाएगा, किस किस को जानने की कोशिश करेगा कि दुनिया जानने में आ जाए, होता ही नहीं है कभी ऐसा। कोई व्यक्ति पूरा जान ही नहीं सकता है, किसी फील्ड में कोई व्यक्ति को केवल ज्ञान नहीं हो सकता। किसी फील्ड की बात करता हूं, किसी एक फैकल्टी की बात करता हूं मैं, उसमें आपको केवल ज्ञान हो जाए तो बतलाओ। आप लोगों में से यहाँ डॉक्टर्स भी होंगे, इंजीनियर्स भी होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी होंगे, सब तरह के फील्ड के लोग यहाँ पर होंगे आप लोगों में, मतलब आपका जो फील्ड है। क्या कोई डॉक्टर ऐसे हो सकते हैं जिनको बॉडी की पूरी नॉलेज हो, पूरी नॉलेज हो? कोई कंप्यूटर इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसे हो सकते हैं जिनको सारे सॉफ्टवेयर चलाना आता हो, बनाना आता हो? अच्छा बिल गेट्स को तो पूरे कंप्यूटर की नॉलेज होगी ना, बिल गेट्स को भी नहीं है, क्या बात कर रहे हो आप, पूरे कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, है ही नहीं। किसी भी व्यक्ति को किसी भी एक फील्ड की पूरी नॉलेज नहीं हो सकती है। आप लोग तो खाना बनाते हैं, आपको तो खाने की पूरी नॉलेज है ना, सब तरह की चीजें कैसे बनाते, है कि नहीं है? और अपने को तो सब आता है इनको, अरे साहब आप तो नाम, आप तो पंडित जी बोलो क्या बना करके खिलाना है आपको, सब बना करके खिलाएंगे, सब चीजें आता है आपको बनाना। तो भाई साहब आ ही नहीं सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये असंभव है ये चीज। तो जान जान करके केवल ज्ञान हो जाए, इसको जान लो फिर इसको जान लो फिर इसको जान लो फिर इसको जान लो फिर इसको जान लो, धीरे धीरे करके सबको जान लो, फिर तो केवल ज्ञान हो जाएगा ना। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, एक को जानने से सब जानने में आ जाएगा और सबको जानने जाएगा तो कुछ भी जानने में नहीं आएगा। आज तक अनादि काल से ये पर पदार्थों को ही जानने में लगा हुआ है, उलझा हुआ है, इसको भी जान लेता हूँ, इसको भी जान लेता हूँ, उसको भी जान लेता हूँ, कुछ जानने में नहीं आ रहा है। इसलिए ये आचार्य कहते हैं, ये वीतरागी संत कहते हैं, दुनिया को मत जान, अपने आप को जान ले बस। सबको तो जाना निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा न पहचाना। कौन क्या कहे तेरे को ज्ञानवान कहे, अपने आप को समझदार कहता है, अपने आप को तो जानता नहीं है, तुझे अपनी खबर तो है नहीं। बोलो लोक व्यवहार में ऐसी बातें नहीं चलती है। कोई व्यक्ति दुनिया की इधर उधर की खबर रखता हो और ज्यादा ही बोलता हो बीच में, आप ये नहीं कहते हो भैया तू अपना काम कर ले तो अपने आप की खबर हो जाए, इतना बस बहुत है, इतना जानो तो ठीक, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इतना शॉर्ट कर दिया है। आप सोच रहे थे मुझे तत्वार सूत्र जानना है, आप सोच रहे थे मुझे भक्तामर जानना है, आप सोच रहे थे मुझे आत्म सिद्धि जानना है, आप पूछ रहे थे मुझे कौन कौन से शास्त्र पढ़ने हैं, आप पूछ रहे थे मुझे गुणस्थान जानना है, ये सोच रहे थे मेरे को ये समझना है, ये सोच रहे थे मेरे को चरणानुयोग पढ़ना है, ये सोच रहे थे मेरे को समय सार पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है मेरे को, कितना काम है, क्या क्या जानना है आपको, कौन कौन सी नॉलेज लेनी है आपको। सबको शॉर्ट कर दिया हमने, सबको सीमित कर दिया, और हमने शॉर्ट में क्या बतलाया, एक आत्मा को जान लो बस, एक आत्मा को जान लो और कुछ नहीं। कि साहब आत्मा को जानने के लिए तो शास्त्र को जानना पड़ेगा ना, कि नहीं, जब आत्मा को जानता है तो सारे शास्त्र अपने आप जानने में आ जाते हैं, ये चमत्कार हो जाता है। इस तरह से जो केवल ज्ञान के माध्यम से जो बात कही गई है, ये बहुत अपूर्व ज्ञान है, ये बहुत अद्भुत ज्ञान है, जिनमें लोकालोक के समस्त पदार्थ एक साथ किसी तरह की कोई मर्यादा नहीं है, बाउंडेशन नहीं है, और स्पष्ट झलकते हैं। तो फिर साहब, हाँ तो फिर साहब एक बात बतलाओ, कल क्या होने वाला है ये भी केवल ज्ञानी जानते हैं? हाँ जानते हैं। तो फिर साहब कल क्या सब्जी बनेगी ये केवल ज्ञानी जानते हैं? हाँ। तो फिर हम विकल्प नहीं करें, तो फिर केवल ज्ञानी आकर के सब्जी बनाएंगे हमारे यहाँ? ठीक है, ये किसने कही तुम्हारे से? लोग जब केवल ज्ञान की बात हम बतलाते हैं और क्रमबद्ध की बात हम बतलाते हैं तो लोग ऐसा समझने लगते हैं हम तो बंध गए साहब, हम बहुत पराधीन हो गए महेंद्र भाई, अब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। अब ये तत्वार सूत्र पूरा होगा कि नहीं होगा, पहला अध्याय ये हमारे हाथ में ही नहीं है, तो केवल ज्ञानी से पूछो आपने क्या देखा है। जैसा उनके ज्ञान में झलका होगा हम वैसा ही होगा, अब अपने हाथ में क्या रहा? इसका मतलब सब कुछ केवल ज्ञान में झलक रहा है, तो हमको जो कुछ भी करना है वो तो केवल ज्ञान में झलक रहा है, और जैसा झलक रहा है वैसा ही काम होगा, तो परतंत्र हो गए ना हम, तो पराधीन हो गए ना। रंच मात्र भी पराधीनता नहीं है, ज्ञान से वस्तु पराधीन नहीं होती। क्या सूत्र कहा हमने? ज्ञान से कोई भी वस्तु पराधीन नहीं होती, जानने से परतंत्रता नहीं आती। और यदि आपको प्री इंफॉर्मेशन हो गई है किसी चीज की, पहले से ज्ञान हो गया है, तो इसका मतलब वो उस चीज से बंध गया है ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग फ्यूचर जानते हो या नहीं? फ्यूचर तो आप जानते, फ्यूचर जानते थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, क्या बात है। आपका ज्ञान तो बहुत विशेष है औरों से। नहीं जानते आप? भी नहीं जानते रमेश भाई? आप तो फ्यूचर जानते होंगे थोड़ा बहुत। हमने एक वो देखा था फ्यूचर जानने वाला, क्रिश नहीं, क्या नाम था उसका, फ्यूचर बनाने वाला कंप्यूटर बना दिया था उसने, कृषि था क्या?
उसने ऐसा कंप्यूटर बना दिया था फ्यूचर जान सकते हैं, आप नहीं जान सकते फ्यूचर। गिरीश भाई आप भी जानते हैं फ्यूचर, आप भी जानते हैं भाई साहब फ्यूचर। महेंद्र भाई क्या कह रहे हैं, आपके यहाँ सभा में बैठे हुए सब लोग फ्यूचर फ्यूचर जानने वाले कि हाँ, मर्यादा में रह करके, अपनी लिमिट में रह करके। तो फिर लिमिट में रह करके यदि फ्यूचर जाना गया तो अवधि माने पर यह ज्ञान हो गया होगा कि नहीं? नहीं, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान भी अपनी लिमिट में फ्यूचर जानते हैं। कैसे? कल कौन सा डे आने वाला है?
कल उठने वाले
हैं,
कल उठने वाले हैं।
नहीं, कल कौन सा डे आएगा ये तो बताओ। ट्यूजडे कल आएगा कि आ चुका? आएगा फ्यूचर में। कितने टाइम बाद? 10-12 घंटे बाद। 10-12 घंटे बाद में आएगा। और आपको अभी पहले से पता है कि ट्यूजडे आने वाला है क्या? सही है, हम जानते हैं। इतना ही नहीं, हम तो 20 साल बाद भी बतला देते हैं। और हम तो इतना फ्यूचर जानते हैं कि आपके यहाँ फुलचंद जी कब आने वाले हैं। बोले कैसे जान रहे हैं आप? वो जैना कन्वेंशन कब हो रहा है? जुलाई। कौन सी डेट में? जून 30 से जुलाई 4 तक न्यूजर्सी में। आपको पता है पहले से? कितने महीने पहले पता है आपको? 1 साल पहले से पता है। लो, 1 साल का फ्यूचर जान रहे हैं आप। तो अब तो जैना वालों को कन्वेंशन करना ही पड़ेगा साहब, क्योंकि आपने जान लिया। ऐसा नहीं है, अब तो मंगलवार को आना ही पड़ेगा क्योंकि पहले से जान लिया गया है। अच्छा, गूगल पर देख करके बता सकते हैं आप कल सनराइज कितने बजे होगा? बता सकते हैं? पता है? अब गूगल पर आ गया तो वो भी सोच रहा होगा कि भैया थोड़ा टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा। वो सन को भी सोचना पड़ता होगा, अब तो टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा। तो पूरा अनाउंसमेंट हो गया है भाई, मैं कैसे आगे पीछे हो सकता हूँ? 1-2 मिनट भी यदि मैं आगे पीछे हो गया तो ये तो सारा गड़बड़ हो जाएगा मामला। तुम्हारे जानने से वो सन, वो सूर्य, वो पराधीन नहीं हो गया क्या? हमारा जानना, हमारी नॉलेज वो अलग चीज है। किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में यदि पहले से जान लिया गया है तो हमारे जान लेने मात्र से वो वस्तु पराधीन या परतंत्र नहीं हो जाती। केवल ज्ञानियों के ज्ञान के माध्यम से यदि लोकालोक को पहले से जान लिया गया है तो इससे वस्तु पराधीन हो गई हो ऐसा रंच मात्र भी नहीं है। ये 5 प्रकार के ज्ञान के संदर्भ में बहुत थोड़ी सी बातें, बहुत ही थोड़ी सी बातें मैंने आपको यहाँ बतलाई है। इन 5 प्रकार के ज्ञानों के संदर्भ में और विशेष बातें कल हम और बतलाने वाले हैं, उसकी चर्चा कल अपेक्षित विस्तार से हम करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं।
Aum Om Namah Shivaya।